नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये गांठोली ग्राम जो है ये भगवान के बहुत ही उत्कट लीला का स्थल है। इट्स अ प्लेस ऑफ वेरी इंटीमेट एंड इंटेंस पास टाइम। यहाँ पर एक बार आकर कृष्ण भगवान और राधा रानी बैठे थे एकांत में। हम भी बैठते हैं बहुत बार, लेकिन हम लोग इतने मग्न नहीं हो जाते हैं जैसे कृष्ण राधा रानी मग्न होते हैं। वहां पर बरसाने में बैठते ना कभी, इतने आंखों में देखते ना कि सब भूल जाते, दुनिया में कुछ है और तुम्हारी आंखें मेरी आंखें, बस इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और उन आंखों से आश्रू आते हैं, वो पूरा कुंड तैयार होता है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे ही एक दूसरे में मग्न होकर यहाँ बैठे हैं पास में एकदम। तो गोपियां आती हैं ललिता विशाखा पीछे से छुप के, पता नहीं चलता उनको, और उनका वस्त्र जो है ना ऐसे इनका इनका दोनों गांठ मार देते हैं और छुप जाते हैं, छुप जाते हैं। तो वो बहुत देर बैठते हैं और आनंद लेते हैं एक दूसरे को दर्शन करने का, और उसके बाद में उठते हैं। जब उठते हैं और चलने लगते हैं तो पता चल रहा है कि ये बंधे हुए हैं। सडनली रियलाइज दैट वी आर टाइड अप। तो जैसे उनको पता चलता है तो सब सखियां जोर से हंसती है जो छुपी हुई है, जोर से हंसती है। कैसे हंसती है? सब गोपियां बड़े आनंद से हंसती है कि ये इनको पता नहीं था हमने बांध दिया उनको। तो दोनों शर्मा जाते हैं बहुत, दे फील वेरी शाय। तो वो जो भाव है उनका ना, तो शर्मा गए हैं, नीचे देख रहे हैं। इसने में सब गोपियां पिचकारी निकालती है और रंग मारती है उनके अंदर, इतना रंग देती दोनों को, इतना रंग देती, इतना रंग देती है कि ये पूरा कुंड तैयार हो जाता है, गुलाल कुंड तैयार हो जाता है। आप बोलेंगे इतना पानी कहाँ से लाया उन्होंने, ये सब पूछने की बातें नहीं है, ये सब दिव्य बातें हैं। दोनों को जितना होली खिलवाया उन्होंने, इतना होली का खिलवाया, पूरा कुंड तैयार हो गया, इसलिए उसका नाम है गुलाल कुंड और गांव का नाम है गांठोली, क्योंकि यहां पर सखियों ने राधा कृष्ण की गांठ बांधी थी। और हमारे विवाह में भी वो होता है, आपके विवाह में हुआ था ना ग्रंथि बंधन, है ना, एक रुमाल होता है उसके अंदर बहुत सारे औषधि डालते हैं, पवित्र औषधि, आपके विवाह में भी किया था। और दोनों को गांठ मारते हैं और जो जो पतिव्रता नारी और पति है उनके, लक्ष्मी नारायण, रेवती बलराम, रावण मंदोदरी, नल दमयंती, ऐसे बहुत सारे जो जोड़ियां हैं उनका नाम लेकर स्यात् ग्रंथि बंधनात् ऐसे बोलते हैं कि उन्हीं की याद करके, जिन जो पतिव्रता जोड़ियां हैं, पतिव्रता नारी की जो पति इनकी जोड़ियां जो हैं उनकी याद करके उनके स्मृति में ये भी हम ग्रंथि बंधन इन दोनों में कर देते हैं, ऐसा मंत्र बोलते हैं। मतलब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, आदर्श का स्मरण करते हुए उनकी ग्रंथि बंधन करते हैं कि ये ग्रंथि कभी छूटे नहीं, इनका बंधन जो है, गांठ छोड़ देंगे अभी वो जो बने बनी हुई है, लेकिन जो दिल की गांठ है वो छूटे नहीं। अभी ये जो लीला है भगवान की, इतनी उत्कट लीला है, इतनी इंटेंस लीला है कि ये पेड़ जो है ना वो भी देखो गांठ में बंधे हुए हैं। अभी जाकर देखना बराबर से आप, वो जो काला पेड़ है ना वो तमाल का वृक्ष है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो गोरा वृक्ष है वो कदम का वृक्ष है, वो राधा रानी का स्वरूप है। तो यही लीला पेड़ों में भी हो रही है, वो राधा कृष्ण पेड़ के रूप में विराजमान है और बीच में गांठ पड़ी हुई है। तो गांठ का दर्शन जरूर करना और प्रार्थना करना कि हमारे भी उनसे ऐसी गांठ पड़े प्रेम की। बहुत अद्भुत स्थान है ये। अभी मैं 25 साल से आ रहा हूं और ऐसी गांठ है उधर, लेकिन हो सकता है कि दोनों अलग हो जाए और पेड़ भी खत्म हो जाए तो आपको दिखेगा नहीं उसके आगे। इसलिए आप धन्यवाद करो भगवान का कि आप आए यहाँ पर, आपको दर्शन अभी भी दिख रहा है। देखो कितना छोटा पेड़ है वो काला वाला, और गोरा वाला पेड़ कितना बड़ा है, और पत्ते भी नहीं है अभी, पतझड़ का मौसम है, अभी पत्ते आएंगे नहीं और फिर बाहर आएगी। तो ये भगवान की चरंतन होली की स्थान, होली की स्थली है। इसकी विशेषता क्या है? ब्रज में वसंत पंचमी से 45 दिन की होली होती है, वो तो एक, वो भी एक पीरियड है 45 डेज का। लेकिन ये एक ही स्थान ब्रज में ऐसा है जहाँ पर 12 महीने होली खेलते हैं भगवान। ये ऐसा स्थान है कि नित्य होली का स्थान है, इसलिए आप दिसंबर में भी आओगे, अक्टूबर में आओगे, मार्च में आओगे, मई में आओगे तो यहाँ पर आपको होली का रंग मिलेगा और होली आप बोलेंगे लगाओ, इनको अर्पण करो और होली खेलो। ये चिरंतन होली का स्थान है, बहुत दिव्य स्थल है ये। तो इसमें वल्लभाचार्य जी महाप्रभु भी आए थे, उन्होंने यहाँ बैठकर भागवत का कथा किया है और भजन भी किया है इस किनारे में बैठकर, इसलिए उनकी बैठक यहाँ पर है। 15वीं बैठक लिखा है। टोटल कितनी बैठक है उनकी, कितनी बैठक है सब जगह पढ़ते ना, महाप्रभु बैठक, महाप्रभु बैठक सब जगह पढ़ते रहते आप। 84 बैठक है भारत में और 84 जगह पर उन्होंने भागवत कथा की है और भजन भी किया एकांत में, इसलिए उसका नाम महाप्रभु जी की बैठक। हर जगह बैठे वहां बैठक नहीं कहते, जहां पर बैठ के भागवत कथा किया, भजन किया, तो निवास किया, उसको बैठक कहते हैं। वल्लभाचार्य जी बहुत महान भक्त थे भगवान के, वो नवद्वीप में आए थे। कौन सा द्वीप है बताओ, कहां पर आए थे वो? रुद्रद्वीप। रुद्रद्वीप पे वल्लभाचार्य जी आए थे और वहां पर एक लोहिताक्ष शिव, उन्होंने दर्शन दिया उनको, शिव जी का एक स्वरूप है, उसका दर्शन उनको हुआ और शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे भजन पे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे एक संप्रदाय शुरू करना चाहता हूँ मेरे कनेक्शन में और तुम उसके आचार्य बनोगे। तो वही पुष्टि मारे हैं। तो ऐसा बहुत सुंदर लीला है और आगे जाकर वल्लभाचार्य जी को पंडरपुर में विट्ठल भगवान ने दर्शन दिया है। तब तक वो अकेले ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब पंडरपुर पहुंचे तो विट्ठल भगवान अपना मंदिर छोड़कर चंद्रभागा नदी के ऊपर चल के आए अपोजिट साइड में, जहां अपना इस्कॉन का मंदिर है वहां पर आए और दर्शन दिया वल्लभाचार्य का। तो वल्लभाचार्य बहुत भाव विभोर हो गए, तो विट्ठल भगवान ने उनको आदेश दिया, आप विवाह करो, आगे जाकर मैं आपके जीवन में समस्या देख रहा हूँ, आप विवाह करो और आपके बालकों द्वारा संप्रदाय जारी रखो। तो वल्लभाचार्य ने विवाह किया है और उनको 2 बच्चे हुए हैं, विट्ठलनाथ जी 2 बालक हुए, दो महान संत थे और इन सभी को भगवान का साक्षात्कार था और सेनाजी इनके लिए प्रकट हुए थे, इनको ही दर्शन करने के लिए, इनके साथ खेलने के लिए सेनाजी दोबारा प्रकट हुए थे। सेनाजी भगवान का लीला का कारण ही यह है कि उनका साक्ष्य लीला से कृष्ण लीला में मन नहीं भरा था, दोबारा साक्ष्य लीला जो बाकी थी उनकी मन में इच्छा उसको पूर्ण करने के लिए वो सेनाजी के रूप में प्रकट हो गए आनियोर गांव में, माधवेंद्रपुरी की इनके माध्यम से द्वारा उनको स्वप्न में आए और बताया स्वप्न में हाथ लेकर कि इधर मैं हूँ, उधर से मुझे निकालो। तो वहां से फिर होश में मतलब जागरूक होकर उन्होंने वहां से उनको प्रकट कराया। तो प्रकट हुए इसलिए है कि उनको अपने सखाओं के साथ में साक्ष्य लीला करने की इच्छा बाकी थी उनकी। तो मेन सखा ये गोकुलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी और उनके 8 शिष्य थे, 4-4 दोनों के, वो अष्टछाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसमें एक सूरदास है, एक चतुर्भुज दास है, एक कुंभन दास है, एक चित्त स्वामी है, एक परमानंद दास है, एक गोविंद स्वामी है, ऐसे 4-4 है दोनों के। और सूर को पदवी दी गई है सूर सागर, वो तो सागर की तरह महान है, सूर सागर के नाम में पद भी दिया गया है। और वल्लभाचार्य जी इतने महान भक्त थे कि वो कभी कभी उनकी समाधि लगती थी तो 3-3 दिन तक समाधि में रहते थे वो तुरियावस्था में। तो उसमें एक दिन गोवर्धन में, एक दिन मैया के पास बाल लीला देख रहे हैं, एक दिन गोवर्धन में श्रृंगार लीला देख रहे हैं, एक दिन यहाँ पर गौचारण देख रहे हैं। तो 3 दिन की लीलाओं का बहुत विस्तार पूर्वक आचार्य वर्णन करते हैं। अभी आप बोलेंगे उनको जब भी समाधि लग गई तो उन्होंने क्या देखा, आपको कैसे मालूम? एक कॉमन क्वेश्चन है ना, ही वॉज इन ट्रांस एंड ही वॉज वॉचिंग समथिंग, सो हाउ डू यू एंड मी नो टूडे? क्योंकि जो संत जो है, जो उनको भी दर्शन होता है कि उनको क्या दर्शन हुआ, और वो जो दिखता है उनको वो कविता में लिखते हैं। जैसे मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, हाँ खेलत दो भैया। ये वल्लभाचार्य अपने समाधि में देख रहे हैं और ये कोई भक्त जो उसका रचनाकार है वो देख रहा है कि इनको समाधि में ये दिखाई पड़ रहा है। तो गुप्त बातें केवल भक्तों के माध्यम से प्रकट होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे भी जो महाभारत में जो हुआ, रामायण में जो हुआ, भागवत में जो कथाएं सुनते हैं, हम लोग कहां थे वहां पर, लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं इसलिए हमको आज पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ। अभी जब माँ ने उनके मुंह में ब्रह्मांड देखा तो किसको पता है, वो किसको पता नहीं है। और हम पढ़ते भी हैं कि दो मिनट में माँ भूल गई क्या देखा था, तो आपको कैसे मालूम पड़ा आज? भगवान ने मुंह खोला, ब्रह्मांड दर्शन कराया माँ को, माँ बहुत भाविभोर हो गई, तो भगवान को अच्छा लगा नहीं, मुंह बंद किया, माँ सब भूल गई, तो माँ ने किसको बताया नहीं। अरे अजी सुनो जी, क्या सुना, आप सुन रहे हो कि नहीं, नंद महाराज को बता रहे कि मैंने ऐसे ऐसे देखा मुंह में, ऐसा वर्णन नहीं उधर, क्योंकि तत्क्षण भूल गई थी वो। तो फिर आपको और हमको वो नॉलेज कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि सुखदेव जी ने उसका अपने समाधि में दर्शन किया, यानी भाव में दर्शन किया, उसका वर्णन करते गए वो, इसलिए हमको पता चला रे मैया ने मुंह में ऐसा देखा था। इसका मतलब क्या है, भगवान की लीला भक्तों के माध्यम से ही प्रकट होती है। बिना भक्त के लीला स्थली या लीला प्रकट नहीं हो सकती, भक्ति की आवश्यकता है। देखो मैं 30 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ और मैंने 50 प्रवचन दिए होंगे कालिया घाट के ऊपर, 50 दिए होंगे, मैं याद भी नहीं कितने दिए। एक दिन कथा किया, बहुत बड़ा समुदाय था, मैं भी 800-900 लोग थे, और कथा किया बड़े प्रेम से, तो जो पुजारी बैठे थे कालिया वृक्ष के नीचे, वो घाट के नीचे, कदम के नीचे, उनको बड़ा आनंद आया कथा में। और कथा होते ही मेरे बड़े प्रेम से आए, प्रभु जी क्या कथा की आपने, आ जाओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अभी उस जगह पर मैं 50 बार जा चुका हूँ। पीछे लेके गया, बोला ये देखो ये अमृत कलश है, अमृत कलश देखो, दर्शन करो, ये गरुड़ जी आकर यहाँ पर अमृत कलश लगे थे ना, वो पेड़ में बना हुआ कलश है ये, लकड़ी का, अपने आप, कोई कार्विंग नहीं किया उसके ऊपर। मैंने कहा मैं इतनी दिन से आ रहा हूँ कभी दिखाई नहीं पड़ा, तो सब समझ में आया, कह रहे भक्त को दिखाए बिना रहस्य की बातें समझ में नहीं आती है, भक्ति आपके लिए दिखाएगा देखो ये है करके। समझो मैं आकर मैं बैठता यहाँ पर, अब आपको पीछे का बताता नहीं ये कुंड कैसा है, कुछ नहीं, यहाँ बोलता चला जाता। तो जब मैंने बोला, कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, अरे ऐसा क्या हो है ना, तो सब जगह ऐसे ही कुंड है, कुछ सड़े हुए हैं, कुछ अच्छा है, कुछ पानी है, कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको बताया जाएगा तो आपको अच्छा अच्छा ये अभी पेड़ के बारे में आप आएंगे दंडा करके चले जाएंगे, लेकिन बताओगे आपको कि अरे गांठ को देखो, गांठ को, वो कृष्ण हो या राधा रानी है, उनकी गांठ बंधी हुई है, अच्छा तो फोटो निकालेंगे, ओ ये है, ओ ये गांठ है, ये सब बातें जो है ना वो किसी की कृपा से ही पता होती है। हम भी वही आए थे ऐसे अनजान बनकर, हमको बताया गया था कि ये है, तो हम किसी को बता रहे हैं, किसी के माध्यम से पता चलता है। तो कौन थे उस समय जब कृष्ण की गांठ बांधी गई, तो आप थे क्या उधर देखने के लिए, लोगों को बताने के लिए? हो सकता है आप थे, लेकिन आप भी भूल गए होंगे आप इस जन्म में। ऐसा ही अद्भुत स्थान है, भक्तों की कृपा से प्रकट होता है। तो मैंने कहा श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए तो लीला करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु आए, माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया, स्थापन किया, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु आए और ब्रज में डोलने लगे यहाँ वहां। तो उनको पता चला कि हाँ माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को प्रकट किया था, मुझे दर्शन करना है उनका, कहाँ है कहाँ है, ढूंढते आए। तो मैंने कहा देखो पर्वत के ऊपर है, बोले हम तो पर्वत नहीं चढ़ सकते, अभी क्या किया जाए, दुखी हो गए महाप्रभु जी। तो श्रीनाथ जी सब जानते हैं महाप्रभु के मन में क्या है, तो श्रीनाथ जी ने एक लीला रचाया, श्रीनाथ जी ने अफवाह फैला दी पूरे गांव में, इधर मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, अटैक करने के लिए आ रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, अफवाह फैला दी। तो वो पुजारी जो थे ना ऊपर ब्रजवासी, जो उनको चढ़ने का अधिकार है, वो सुना उसने, अरे मुगल आ रहे हैं, तुरंत मूर्ति को लेके भागा उतर के, और इधर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर मूर्ति को रखा। और महाप्रभु पता चला कि श्रीनाथ जी नीचे आ गए, तो महाप्रभु भाग के आए इधर, और 7 दिन 7 रात यहाँ धूमधाम से कीर्तन किया भगवान ने, बहुत धुआंधार संकीर्तन किया, सब ब्रजवासी आए, उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रेम संकीर्तन का आनंद लिया 7 दिन तक। 7 दिन के बाद पता चला भगवान की लीला से कि वो अफवाह थी। चलो अभी श्रीनाथ जी को वापस लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस जुलूस का नेतृत्व किया, वो पालकी में जब लेके जाते थे यहाँ से, तो उसके नेतृत्व में नाचते नाचते यहाँ से लेकर पता नहीं कई किलोमीटर है जतिपुरा, कितना किलोमीटर जतिपुरा यहाँ से कम 5-6 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है 1 किलोमीटर है बस, पास में आ गया होगा फिर, कमल है ना, कमल ऐसा लेकिन यहां से लेकर जुलूस निकाला उन्होंने और गोवर्धन के तले तक वो संध्या मंडली पहुंची। फिर ब्रजवासी सुनाथ जी को लेकर ऊपर गए और मंदिर को उधर मंदिर में उनको पुनर्स्थापित किया। ऐसा ही अद्भुत स्थली है, कभी पुष्टि मार्गी के लोगों के सेवा में है ना वो, तो फिर गुजराती लोग आते हैं अपनी सेवा करते हैं, महाप्रभु जी का पूजा करते हैं, उनका आचार्य है ना वो बहुत सुंदर है, फिर बाहर से सेवा करते हैं। तो जहाँ जहाँ महाप्रभु जी की बैठक है वहाँ पर बड़ा आनंद आता है। तो वो महाप्रभु जी भी आए हैं, हमारे महाप्रभु जी भी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु है ना, बहुत सुंदर स्थान है। तो सब लोग प्रार्थना कीजिए, ये जो रंग का होली का थोड़ा बताना जरूरी है, ये रंग के माध्यम से प्रेम प्रकट करते हैं। द कलर इज द मीन्स बाय विच वी एक्सप्रेस अवर लव। और अभी वो उसी के माध्यम से लोग विभत्स भाव प्रकट करते हैं, मोस्ट डेडली मोस्ट हीनस एक्टिविटी दे डू बाय हैरेसिंग वुमेन बाय पुटिंग ऑयल पेंट एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो इसका वो विकृत स्वरूप है, मोस्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द होली दैट यूज टू हैपन हियर। तो यहाँ पर हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी कभी भगवान को प्रेम से रंग अर्पण करें और हमारा प्रेम प्रकट करें। लेकिन ये बहुत ऊंची चीज है, इट्स नॉट वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वेरी डिवाइन, वेरी हाईली डिवाइन एक्टिविटी। जब भगवान होली खेलते हैं, केवल प्रेम को प्रकट करने के लिए खेलते हैं, भगवान हारने के लिए खेलते हैं, गोपियों को जिता देते हैं, प्रेम चरणों का वंदन करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, फगवा देते हैं, भेंट देते हैं इनको हारने के बाद, तो ये बहुत ही गहरी प्रेम की लीला है। और केवल ब्रज में ही उसका भाव समझ सकते हैं, बाकी सब जगह पर कीचड़ ऑयल पेंट ये सब केमिकल एलर्जी वाला और चेहरा जलाने वाला सब चलते रहता है। यहाँ पर आके हम लोग ना ओरिजिनल चीज समझ सकते हैं। बॉम्बे में जो देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, अभी वृंदावन में जो देखते हैं, वो सब परवर्टेड है। लेकिन यहाँ पर आके समझ सकते हैं कि ओरिजिनल क्या था, कितना दिव्य था, कितना श्रेष्ठ था, उसका अनुभव यहाँ पर आएगा। इसलिए हमको दिव्य स्थान पर आना चाहिए। ये कथा जो आज मैंने आपको बताई कि बम्बई में आप सुनेंगे ना तो आपको इतना परिणाम नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि बम्बई में ये पेड़ नहीं है, ये कुंड नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ वीडियो पर या इस पे दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी साक्षात आना यहाँ पर दर्शन करके इस कथा सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी पता नहीं कितने साल स्थानों पर आकर कथा कर सकूंगा, आई डोंट नो। एक समय आएगा कि एक जगह बैठकर कथा करूंगा, लोग जाके दर्शन करके आएंगे, लेकिन उस स्थान पर बैठकर उस स्थान की महिमा सुनना और प्रेमी भक्तों के बीच में बैठकर सुनना ये बड़े महात्म्य की बात है। इसमें जो शुद्धिकरण प्राप्त होता है ना वो बहुत बहुत पावरफुल होता है। जैसे आजकल हम लोग कथा सुनते हैं ना यूट्यूब पर सुनते हैं कभी कभी, और महाराज जी पुणे में कथा कर रहे हैं, मैं तभी यूएस में हूँ, तो उस टाइम पे हम लोग उसको ऑन करते हैं और यूट्यूब में कथा देखते हैं। वो तो एक हमारा क्या कहते हैं मजबूरी है, हम लोग वहां पर नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष जब संत के चरणों में बैठते हैं, उनके मुखारविंद से कथा सुनते हैं, और समझो उस स्थान पे ही बैठे हैं जहां पर यह लीला हुई थी, उसके हजारों गुना आध्यात्मिक लाभ होता है उसका। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मोर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड बेनिफिट टेक्स प्लेस व्हेन यू सिट इन द सेम प्लेस एंड द लविंग डिवोटीज कंपनी यू हैव द सेम पास्ट टाइम। हम लोग भी बरसाना में बैठ के भी कथा कर सकते हैं, आजकल में रूम में बैठ कर, या वृंदावन के हमारे ऑफिस में बड़े रूम में बैठ कर कथा कर सकते हैं कंफर्टेबल बैठ के एकदम फर्स्ट क्लास। एक फोटो दिखा सकते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर गुलाल कुंड का, अलग एंगल दिखा सकते हैं। लेकिन जो 3D आपको यहाँ पर फीलिंग हो रहा है वो मेरे फोटोग्राफर में नहीं मिलेगा आपको। कितना भी एंगल से फोटो ले लो, वीडियो ले लो, लेकिन यहाँ का जो वाइब्रेशन है, चेतना जो है, यहाँ की दिव्य चेतना जो है इस पेड़ के नीचे बैठ कर, वो आपको नहीं मिलेगी वहाँ पर। इसलिए भगवान का बार बार धन्यवाद करो, इन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने इस स्थान को बनाकर रखा है, कम से कम दिख रहा है कुछ आपके सामने। अगर नष्ट हो गया तो बिल्डिंग बनी हुई तो क्या कहते हैं हम, क्या देखते हैं और क्या बताते हैं आप? पेड़ नष्ट हो जाएगा तो क्या बताएंगे आपको, फोटो दिखाएंगे और क्या दिखेंगे? लेकिन आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर दर्शन हो रहा है, जो हम कह रहे हैं उस प्रमाण है उसका, इधर कोई उसको टाल सकता है क्या मेरी बात को? जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखो किस तरह दर्शन है, वो भी काला और गोरा ट्री, कितनी भाग्य की बात। तो अनंत बार धन्यवाद करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।